परित्राज भगवान ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री नित्याय गौर हरि की जय। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवत्युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 21 महाराज ऋतु द्वारा उपदेश। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुम स्रग्भिः दुकूलैः स्वर्ण तोरणैः महासुरभिः धूपैः मण्डितं तत्र वै मैत्रेय उवाच। मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिः दुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैः मण्डितं तत्र वै मैत्रेय उवाच। मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिः दुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिः धूपैः मण्डितं तत्र वै मैत्रेय उवाच। मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिः दुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैः मण्डितं तत्र वै
मैत्रेय उवाच। मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिः दुकूलैः स्वर्णतोरणैः मंडितं तत्र वै मैत्रेय उवाच
मौक्तिके कुसुमस्रग्भि
दुकुले स्वर्णतोरणे
मंडितं तत्र वै मैत्रेय उवाच
मौक्तिके कुसुमस्रग्भि
दुकुले स्वर्णतोरणे
मासुरभिर्भिर्दुपे मंडितं तत्र वै
मैत्रेय उवाच
मैत्रेय ने कहा
मौक्तिकैः
मोतियों से
कुसुम
फूलों की
श्रग्भि
मालाओं से
दुकुलैः
वस्त्र से
स्वर्ण
सुनहले
तोरणैः
द्वारों से
महासुरभिः
अत्यधिक सुगंधित
धूप
सुगंधित द्रव्य
से
मंडितं
अलंकृत
तत्र
वहां
वै
निश्चय ही
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब राजा ने अपनी नगरी में प्रवेश किया तो उसके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। तात्पर्य, वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है, यथा सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे पुष्प, वृक्ष तथा रेशम। वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों को ऐश्वर्य तथा अलंकरण मानती है। ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का आध्यात्मिकरण हो जाता है। राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्यमय अलंकरणों से सजाई गई थी। अनुवाद द्वारा ये महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा जब राजा ने
अपनी नगरी में
प्रवेश किया
तो उसके स्वागत के लिए नगरी को
मोतियों
पुष्पहारों
सुंदर वस्त्रों
तथा सुनहरे द्वारों से
सुंदर ढंग से
सजाया गया था
और सारी नगरी
अत्यंत सुगंधित
धूप से
सुवासित थी।
ओम ज्ञान अतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गुरुर्कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सहगजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमदेव भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च प्रतिपतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये 21वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, महाराज पृथु द्वारा उपदेश। महाराज पृथु अपने राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। और नगरी के वासियों ने उनका स्वागत किया। सारे नगरी को सजाया हुआ था। किस तरह से सजाया हुआ था इसका वर्णन यहाँ पे मैत्रेय ऋषि करते हैं। उनके स्वागत के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया था? पहले मोतियाँ, दूसरे पुष्पहार, फिर सुंदर वस्त्र और सुनहरे द्वार, और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। सुंदर कौन सा और सुगंध आ रहा है, वो धूप का है या पुष्पों का है?
पुष्पों का।
तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से स्वागत किया जाता था। प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पे बहुत ही सुनने योग्य है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है, पहली बात। इसके उदाहरण क्या है? सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे पुष्प, वृक्ष तथा रेशम, ये प्राकृतिक ऐश्वर्य के उदाहरण है। तीसरी बात, वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों को ऐश्वर्य तथा अलंकरण मानती है। तो वैदिक सभ्यता में ऐश्वर्य क्या था इसका उल्लेख भी है इधर। चौथी बात, ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का अध्यात्मिकरण हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्यमय अलंकरणों से सजाई गई थी। आप सोच रहे होंगे मैं इतना फूल 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 के ऊपर क्यों बोलता हूं, फूलों के ऊपर इतना जोर दे रहा हूं। याद है ना, कितने महीनों से स्पर्शों से कि हमारे गोकुल धाम फूलों से अलंकृत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, इस पर थोड़ी देर में आएंगे, क्रम से जाते हैं प्रभुपाद के तात्पर्यों में। तो जो भी बिंदुओं का उल्लेख यहाँ पे किया है उन्होंने, पहली बात क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है। वास्तविक ऐश्वर्य, आजकल लोगों को क्या लगता है ऐश्वर्य का मतलब है? बहुत बड़ा घर होना,
बहुत बड़ा गाड़ी हो जाना, 5-10 गाड़ियां होना, घर में बड़े बड़े स्क्रीन वाले टीवी होना, जैसे ऐसे लगे कि हम सिनेमा के घर में बैठे हैं। और फिर बहुत सारे हमारे पास वो प्लास्टिक के कार्ड होना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे हम पैसे लगा, प्लास्टिक का पैसा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ के नोट, ये सब ऐश्वर्य है। और इधर उधर घूमना, यही तो यही ऐश्वर्य है। और कैसे खाना, होटल, बड़े बड़े होटल में जाके वातानुकूलित, कृत्रिम वातानुकूलित ऐसे अवस्था में बैठ के अच्छे अच्छे बड़े मेज के ऊपर मांसाहार करना, शराब पीना, ये ऐश्वर्य है। खूब भोग करना, परंतु वास्तविक ऐश्वर्य का मापदंड ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ियाँ कितनी है, हमारे पास ये सब पॉलिएस्टर के कपड़े कितने हैं, कितना कितना बड़ा गाड़ी बंगला है, वो भी सीमेंट से बना हुआ, सबसे पहली बात वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है, हमें ये याद रखना चाहिए। प्रकृति जब तक हमें नहीं देगी तब तक हमें कोई ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होगा। अंततः हमारा जो जीवन है, हमारी सभ्यता है, हमारा समाज है, हमारा विकास है, हमारी जीविका है, वो सब प्रकृति के देन पर निर्भर है। और यदि हमने इस बात को माना नहीं तो फिर हमारे लिए ये विनाश काल विनाश हो जाएगा, विनाश का कारण हो जाएगा। हम जितने भी चीजें बनाते हैं हमारे बड़े बड़े कारखानों में, तो उस सारे के सारे प्रकृति के देन पर आधारित हैं। जैसे बड़े बड़े कारखानों में सीमेंट बनाते हैं, लेकिन सीमेंट के लिए कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं? जो प्रकृति में मिलते हैं पदार्थ, उन्हीं से तो हम सीमेंट बना सकते हैं। गाड़ियां बनाते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां, वो गाड़ियां कहाँ से बनती हैं? और लोहा कहाँ से आता है? और जितने भी पदार्थ हैं जिनके द्वारा गाड़ी बनती है, वो सारे पदार्थ कहाँ से आते हैं? हाँ, अधिकतर कारखानों से आते हैं, लेकिन कारखानों में ये सारी चीज़ें बनाने के लिए सारे सामग्री कहाँ से आती हैं? प्रकृति से आती हैं। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बताते हैं कि मानवीय ऐश्वर्य ये प्रकृति के देन से उत्पन्न होती है, न कि बड़े बड़े कारखानों से। ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी फ्लरिशेज बाय गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नॉट बाय जाइगेंटिक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। मतलब मनुष्य समाज की जो समृद्धि है वो प्रकृति के भेंटों से पर आधारित है, न कि बड़े बड़े कारखानों से। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि पहले वृंदावन से दिल्ली जाते समय केवल खेत वगैरह मिलते थे जिसमें हरियाली होती थी, सब फसल उगे हुए रहते थे, और आजकल जाते हैं तो क्या देखते हैं? गुडियर टायर फैक्ट्री, गाड़ियों के टायर बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने, जिसमें से वो तरह तरह के प्रदूषण के धुएं वह उगल रहे वहां से। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, जब अकाल पड़ जाएगा, जब लोगों को भूख लग जाएगा, क्या उस समय हम नट बोल्ट खा सकते हैं? नट बोल्ट पता है ना क्या है? इस नट बोल्ट खा सकते हैं क्या? हमें क्या चाहिए? प्रकृति के ऊपर, प्रकृति से दिए गए हमें जो अनाज है, फल है, और गाय से मिली हुई दूध है, इन सब चीज़ों पर ही हम जी सकते हैं। तो तो आपका तथा कथित समाज सामाजिक विकास और आपकी तकनीकी विज्ञान ये सब आपको क्या करेगा? अंततः हमें भोजन चाहिए खाने के लिए और आराम से जीना चाहिए, परंतु जब तक आपका भोजन नहीं मिलेगा आपको उस समय क्या फायदा? कुंती महारानी के प्रार्थनाओं में ऐसे एक दो श्लोक उन्होंने बताए हैं इसी संदर्भ में, किसी को याद है तो बोल सकते हैं। कुंती महारानी की स्तुति नहीं याद? हाँ? नहीं, इस संदर्भ में इमे जनपदा श्रद्धा सुपकोषधि वीरुधः फिर नद्युदन्वन्तो तव वीक्षितैः। इसका क्या मतलब कौन समझाएंगे? इमे इमे मतलब ये सारे जनपदा जनपद जनपद जैसे होते ना तहसील का स्थान होता है जैसे खानापुर है ये वो सब। इमे जनपदा स्पृद्धाः सुवृद्धि दिख रहे हैं ये सारे जितने भी गोचर भूमि है खेत हैं गांव हैं और जनपद हैं शहर हैं ये सब हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बहुत ही ऐश्वर्यशाली लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? सुपकोषधि वीरुधः क्योंकि इसमें सब सब खिले विले लग रहे हैं सब हरियाली है खेत है ये सब लग रहे हैं। तो क्यों लग रहे हैं?
आप यहाँ पर हैं
नहीं और क्या खेत ऐसे लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं इसे नदी उदनवंत वनाद्री नद्युदन्वंत वन अद्री अद्री अर्थात पर्वत नदी उदनवंत मतलब सागर ये सब ऐश्वर्य से भरे हुए हैं सब मनुष्य समाज को तरह तरह के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये दंती ही दंती तव वीक्षित ही इनका वर्धन हो रहा है। ए धनते ही मतलब निश्चित ही धनते तव वीक्षित ही आपकी कृपा दृष्टि के कारण ही ये सब बिल्कुल खिले हुए लग रहे हैं खेत खिल रहे हैं। और खेतों की खिलनों से क्या होता है? जब फसल उगती है हमको भोजन मिलता है गेहूं हो चावल हो रागी हो तरह तरह के और चीज सब्जियां हो बहुत सी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। और फिर नदियों के द्वारा क्या मिलता है? हाँ एक कोई बोले हाथ ऊपर नदियाँ ऊपर से पहाड़ों से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को लेके आती है और जब बाढ़ होता है तो ये मिट्टी नीचे सारे ज़मीन के ऊपर आ जाती है। तो ये भी एक ऐश्वर्य है कि मिट्टी बहुत भूमि बहुत उपजाऊ हो इसकी उर्वरा शक्ति हो जिसमें से फसल बीज डालने से फसल अच्छी तरह से निकले। और पहाड़ों से क्या मिलता है? खनिज पदार्थ जैसे
सोना चांदी लोहा
बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। और समुद्रों से क्या मिलता है?
मोती
मिलते हैं। ये सब प्राकृतिक ऐश्वर्य के पदार्थ हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन अद्री वनों से हमें क्या नहीं मिलता? देखते हैं ना यहाँ जितने में भी औषधियाँ चाहिए और सब कुछ मिल जाता है यहाँ आंवला मिलता है हरडा मिलता है जो भी कुछ हमारे जीवन के लिए हमारा औषधि पदार्थ भी चाहिए हमारे यहाँ गोकुलधाम के वन में मिल जाता है। वन अद्री पर्वत अद्री अर्थात पर्वत नदी उदनवंत
समुद्र और फिर जितने भी खेत हैं, ये प्रकृति से ही सब कुछ खिल रहा है, सब कुछ ऐश्वर्य जो है सब ये आपकी कृपा दृष्टि के कारण हो रहा है। और कौन सा श्लोक कुंती महारानी की स्तुति नहीं पढ़ी है सबने, कंठस्थ नहीं किया? सब महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं आठवें स्कंद में। तो कोई पहला स्कंद लाइए और ढूंढिए कौन सा श्लोक है दूसरा, इसके साथ वाला ही श्लोक, ये श्लोक मिल गया ना, फिर इसके साथ वाला और कौन सा है? हाँ, नेयम शोभिष्यते तत्र यथानामी गदाधरः त्वत्पदैरंकिताभाति स्वलक्षण विलक्षितैः। तो इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य पढ़ो, अनुवाद।
हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा।
तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि जब होती है, जब उनके चरण चिन्हों चिन्ह रह जाते हैं किसी भूमि पर, तब समस्त प्रकार के समृद्धियां, ऐश्वर्य, संपदा वो सब आ जाते हैं प्रकृति में। प्रकृति मानव की खिल उठती है और प्रकृति के खिल उठने से तरह तरह की चीजें उत्पन्न करती हैं प्रकृति, जो कि हमारे लिए हमारे बिल्कुल सुखी जीवन के लिए संपूर्ण है, पर्याप्त है। प्रकृति के भेंटों के अतिरिक्त हमें और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं कि बड़े बड़े कारखानों की और कारखानों से जो का उत्पादन है, इनकी भी वास्तव में हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हम सोचते हैं कि इन कारखानों के उत्पादनों से हमारा जीवन ज़्यादा सुखी हो जाएगा, परंतु समस्या का समाधान तो थोड़ा बहुत हो जाता है, परंतु 10 और नए समस्याएं शुरू हो जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया था गाड़ियों का, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं ना, कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कम समय में जाने के लिए हम गाड़ियों का आविष्कार करते हैं। अभी हवाई जहाज और गाड़ियाँ जो पेट्रोल पे चलती हैं, फिर उनके लिए प्रकृति का कितना शोषण करना पड़ता है, और फिर उसके बाद अपघात कितने होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। आपको पता है भारत में हर दिन कितने लोग मरते हैं गाड़ियों के अपघात में रास्तों पे? हर दिन प्रतिदिन कितने मरते हैं भारत में रास्ते में गाड़ियों का अपघात होने से? 450 लोग प्रतिदिन मरते हैं भारत में, सारे भारत।
सांप काटने से
पता नहीं
कम रहेगा।
मैंने आपको बताया होगा, एक बार जब पूनम मंदिर के ब्रह्मचारियों से हम बात कर रहे थे गोकुल धाम के बारे में, राधेश्याम प्रभु ने कहा था कि आप जरा उनको बताइए, ताकि वहाँ जो भक्त हैं वो यदि गोकुल धाम में आके रहना चाहें तो आ सकते हैं। तो फिर गोकुल धाम के बारे में जब बताया तो एक भक्त ने पूछा कि हमने सुना कि वहाँ जंगली जानवर है और खतरा है बहुत। तो हमने कहा कि यहाँ के खतरे से ज़्यादा शहर के खतरे हैं, और हमें बताया सारे सब आधुनिकीकरण के कारण, हमने ये बताया कितने साल में कितने लाखों लोग मर रहे हैं केवल गाड़ियों के टकराने से, किसी ने किसी को उड़ा दिया,
और उसी समय लगभग दो ऐसी घटनाएं हमने पढ़ी थी, तो वो हमने बता दी कि शहर में गाड़ी इस तरफ से जा रही थी और फुटपाथ पे दूसरी ओर, दूसरी तरफ शहर ये रास्ते के दूसरे साइड बगल में एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था उल्टी दिशा। तो इसके जो गाड़ी जा रही थी उसके चक्के के नीचे से एक पत्थर रॉकेट की तरह निकला, उस आदमी के सर को लगा, मर गया बेचारा। गाड़ी एक तरफ जा रही है, वो दूसरी तरफ जा रही है, दूसरे तरफ और कोई पत्थर पड़ा था रास्ते पे, गाड़ी का चक्का उसके ऊपर गया और रॉकेट की तरह निकल गया, वो आदमी के सर को लगा, मर गया। और उसी समय कलकत्ता में बहुत बड़ा अस्पताल था, बिल्कुल एयर कंडीशन कमरे वाले सारे कमरे, एयर कंडीशन वाले, और उसमें आग लग गई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी आग लग गई, और वहाँ पे लोग तीसरे चौथे कमरे से वो तले से कूद रहे थे नीचे आग से बचने के लिए, बहुत सारे लोग मर गए, कई लोग जल के अंदर ही मर गए। इतना बड़ा बड़ा इतनी बड़ी इमारत थी, एकदम पॉश सब ये हॉस्पिटल था, लेकिन क्या हो गया। तो खतरा कहाँ ज़्यादा है, शहर में ज़्यादा है या गांव में ज़्यादा है? जंगल में रह के भी खतरा कम है, वैसे तो सारे दुनिया में खतरा है, भौतिक जगत ही खतरों की दुनिया है, ये दुखालय अशाश्वत है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि यहाँ खतरों से मुक्त रहेंगे, चाहे जंगल में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे जहाँ भी रहो, यहाँ पे खतरे रहेंगे। अब जो शहरों में खतरे हुए कोरोना वायरस के कारण कितने ज़्यादा था, गांव से ज़्यादा खतरे शहर में हुए, है कि नहीं? तो खतरे कहाँ पर ज़्यादा है, ये आधुनिकीकरण के कारण ही खतरे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि ऐसा नहीं सोचो कि यहाँ गोकुल धाम में ज़्यादा खतरा, खतरा तो है, सांप भी है यहाँ, तो ये भी है, कभी कुछ जंगली जानवर आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कितने ऐसे घटनाएं हुई हैं इतने सालों में गोकुल धाम में, बताओ कितने घटनाएं हुई हैं, और बेलगाम शहर में, पुणे शहर में कितने अपघात हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो केवल लोग ऐसे डर जाते हैं। बात यह है कि जब तक हम भगवान के रास्ते में नहीं चलेंगे तो खतरे बढ़ते रहेंगे, जितना हम भगवान के रास्ते में चलेंगे सब कुछ मंगलमय होगा, भगवान की सुरक्षा होगी। प्रहलाद महाराज जिस खतरे में थे वैसे खतरे में हम कभी रहे हैं क्या? किसी ने हमें आग में डालने के लिए कोशिश की है? किसी ने हमें पर्वत के ऊपर से नीचे फेंकने का प्रयास किया है? नहीं ना। किसी ने हमें जहरीले सांपों के उसमें खड्डे में जाके फेंकने का प्रयास किया है? किसी ने हमें पागल हाथी, उन्मत्त हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया है कभी? ऐसे खतरे हमारे जीवन में तो नहीं आए, फिर भी भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उस अवस्था में भी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। तो इसलिए हमें ये जानना है कि यदि हमने भगवान को केंद्र बिंदु बनाया और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया तो भगवान की कृपा दृष्टि हम सब पर रहेगी और सुरक्षित हम सब रहेंगे, हमारा जीवन समृद्धिपूर्ण रहेगा, समृद्ध रहेगा हमारा समाज। और जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो प्रकृति के ऐश्वर्य, प्रकृति के देन, प्रकृति की भेंट बढ़ेंगी। तो वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है, फिर प्रकृति हमें ये सब चीज़ें जब देंगी, जब अनाज होगा, सब्जियां होंगी, फल होंगे, फूल होंगे, दूध होगा, ताज़ा पानी होगा, हवा ताज़ा होगा, सब कुछ सुंदर होगा, यह वास्तविक ऐश्वर्य है। और इसके उदाहरण क्या है? सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे पुष्प, वृक्ष तथा रेशम। ऐसे कभी नहीं कहा है कि एयर कंडीशनिंग और गाड़ी और कंप्यूटर है ना, हवाई जहाज, ये सब हमारे लिए ऐश्वर्य है। ऐसे प्रभुपाद जी नहीं कहा, नहीं मैत्रेय ऋषि ने ऐसे कहा। वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों को ऐश्वर्य तथा अलंकरण मानती है। अन्य चीजों को अलंकरण नहीं मानती है। तो हमारे यहां भले चांदी सोना न हो गोकुलधाम में, लेकिन शास्त्र में ऐसे बताया गया, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग के लिए जो रत्न है, जो मणि है, वो क्या है? फूल है। इसलिए हम इतना जोर दे रहे हैं यहाँ पर गोकुलधाम में कि हरेक को फूल उगाने चाहिए, अपने सब्जियों के साथ साथ, अनाज के साथ साथ, बाकी जितने भी और चीजें उगा रहे हैं, तरह तरह के दालें हों, तरह तरह के और चावल आदि सब हो, सब्जियां हो, वो तो उगाने चाहिए ही, वो तो खाने के लिए चाहिए हमें, लेकिन साथ साथ फूल फूलों की भी आवश्यकता है। क्योंकि जब भरपूर मात्रा में सुगंधित सुंदर फूल होंगे तो हम भगवान का के सिंहासन को, भगवान के अल्टर को सजा सकेंगे, भगवान के लिए सुंदर फूल मालाएं बना सकेंगे, भगवान को अर्पण कर सकेंगे और वातावरण बहुत रमणीय होगा। फूलों के बिना भक्ति हो सकती है क्या? नहीं। जितने भी बड़े बड़े भक्त वृंदावन में, कितने हमारे भजन हैं जो फूल मालाओं के ऊपर निर्भर है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, आप सबको याद है, दांती या माला तीर माला वो दोहारे गले। मालती की गोपियां क्या करती है वृंदावन में? फूलों की माला बनाती है राधा कृष्ण को अर्पण करने के लिए। आरती में फूल चाहिए, श्रृंगार के लिए फूल चाहिए। रत्न न हो, मोती सोना चांदी न हो, कोई बात नहीं, परंतु फूल होने चाहिए हमारे लिए। फूलों से जब फूल जब होंगे तो न केवल हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, भगवान का श्रृंगार कर पाएंगे, भगवान को अर्पण कर पाएंगे, परंतु सब जगह वातावरण खिल उठेगा। क्यों? और सब जगह फूलों के वृक्ष होंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है। यही बात हम कहते आए हैं ना कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी मानसिक दशा बदल जाएगी। जब हम एक बहुत तामसिक जगह में रहते हैं जहाँ सब गंदगी हो, सब जगह प्लास्टिक के पौधे, सब सारे थैलियाँ पड़ी हुई हो, पान पराग पान मसाला का वो सब हो, पड़ा हो, तरह तरह की गंदी चीज़ें पड़ी हों, यहाँ वहाँ पे सिगरेट के पैकेट पड़े हों, गंदगी, ऐसे वातावरण में कैसे रह सकते हैं? मानसिक शांति हो सकती है क्या? मन तो तामसिक हो जाएगा ऐसी चीज़ों से। लेकिन जब ऐसे हिरे सब सारा वातावरण हरियाली से भरा हुआ है, सुगंधित सुंदर रंग बिरंगी फूल हैं, और थोड़े वहाँ पर तालाब हैं जिसमें कमल पुष्प हैं, और फिर बतख आदि सब घूम रहे हैं, हंस आदि तैर रहे हैं, अभी हंस तो नहीं तैरेंगे, फिर आके यहाँ जानवर खा जाएंगे उनको, लेकिन फिर हंस वो ना हो, लेकिन तालाब और जिनमें कमल पुष्प आदि हो, इतना रमणीय वातावरण होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन सात्विक हो जाता है। शहरी चमक धमक एक तरफ और प्राकृतिक सौंदर्य दूसरी तरफ। आजकल लोग
शहरी चमक धमक से बहुत प्रभावित है। और शहरी चमक धमक का ऐश्वर्य क्या है कि ये सब नकली सब चीजें चमकेंगी और प्लास्टिक के फूल से सजाए जाएंगे सब। आजकल वही होता है ना, प्लास्टिक के फूल मिलते हैं बाजार में, प्लास्टिक के फूलों से सब सजाते हैं, मालाएं बनाते हैं। ये ऐश्वर्य है, नकली फूल लगाओ, नकली चीजों को करना, ये ऐश्वर्य का मापदंड है आजकल। असली चीजें यहां मिलती हैं, उसके लिए समय नहीं लगेगा, हर चीज नकली। तो इसलिए यहाँ पे जो गोकुल धाम में भक्त लोग रहते हैं, सेवा करते हैं, यहाँ रहते हुए मन प्रसन्न रहना चाहिए, मन सात्विक रहना चाहिए। तो जब ऐसे हरियाली होगी यहाँ पर और जब फूल खिलेंगे सब जगह, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। जब फूल सब जगह खिलेंगे मन कितना प्रसन्न रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जितने भी राजाएं थे, राजाओं के महलों में जो उनके शरीर में जब बगीचे वगैरह अवश्य रहते थे, चाहे वो पुराने काल के वैदिक राजा हों या आधुनिक काल के राजा हों, और फिर वो हर शाम को टहलने जाते थे बगीचे में जहाँ फूल 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 सब जगह हों। और दूसरी बात, मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है, अर्थात सात्विक हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और एक बात कहते हैं, और पूरे वातावरण का अध्यात्मिकरण हो जाता है। कैसे? फूलों से। तो केवल मन को प्रसन्न करने की बात नहीं है, मन को के ऊपर आध्यात्मिक एक प्रभाव पड़ना। और हम सब तो आध्यात्मिक प्रगति से में रुचि रखते हैं ना, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं गोकुल धाम में। तो आध्यात्मिक प्रगति कैसी हो? हरि नाम से, भागवत श्रवण से, अर्चा विग्रह का दर्शन और सेवा से, प्रसाद के सेवन से, ये सब चीजें हैं। परंतु साथ साथ वातावरण यदि इस तरह का हो तो हमारी भक्ति और भी अच्छी तरह से बढ़ सकती है। देखिए, ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का अध्यात्मिकरण हो जाता है। राजा पृथ्वी की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्यमय अलंकरणों से सजाई गई थी। तभी आपको पता चला है फूलों के ऊपर हम कितना जोर, इतना जोर क्यों दे रहे हैं। आपको याद है क्या बताया था? आपको एक जिम्मेदारी दी थी ना आप सबको, क्या जिम्मेदारी थी?
फूल ही फूल।
फूल क्या? फूल क्या?
12 महीना फूल में
हर एक भक्त को कम से कम एक एक फूल का पौधा या पेड़ वगैरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए भगवान को अर्पण करने के लिए। हर एक व्यक्ति की सेवा व्यक्तिगत सेवा होनी चाहिए, अपना फूल उगाओ और भगवान को अर्पण करो। अपने दूसरी सेवा जो भी हो, कोई रसोई में सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं, कोई ऑल्टर में सेवा करते हैं, कोई गाय बैलों की सेवा करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई सब्जी उगाते हैं, कोई सफाई करते हैं, बाकी जितने भी कोई सेवा क्यों ना कर रहे हों, ये अपनी एक व्यक्तिगत सेवा सबकी होनी चाहिए। बराबर याद है, सबने शुरू भी किया था और हमने ये भी बताया था कि बहाना नहीं बनाना। क्या बहाना नहीं बनाना? कि हमारी दूसरी सेवा है, हमको कुकिंग करना है, हमको ऑल्टर में जाना है, सब्जी उगाना है, खेती करना है, ये सब चीज़ें नहीं बताना। जो भी हो या ना हो, हर एक को अपना फूल उगाना चाहिए और स्वयं आके भगवान को अर्पण करना चाहिए और अन्यों को भी देना चाहिए ताकि आप भी अर्पण करो भगवान के लिए। और फिर वास्तव में ये फूल खिलेंगे, गुलशन गुलशन ये सब हो जाएगा, तब देखो वातावरण कितना रम्य हो जाएगा, रमणीय हो जाएगा, और गोकुल धाम में रहना कितना और भी आनंदमय हो जाएगा। फिर जप करना, कीर्तन करना, और बड़े उत्साह से खेती करना, सब्जी उगाना, रसोई करना, इसमें और कितना आनंद आ जाएगा, है ना। नहीं तो हम वहां बैठेंगे गाड़ियों के पौ 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 उसमें बैठेंगे शहर में, और सब जगह से धम धम धक 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 वो सब संगीत तथा कथित संगीत सब जगह जोर से बज रहा है, कहाँ टीवी का कुछ जोर जोर से बज रहा है, कहाँ लोग झगड़ा कर रहे हैं रास्ते पे, कितनी आवाज या शांति देखो कितना, फिर भी लोग आते जाते उछलना वो तो होता है, क्या करें। लेकिन शहरों में बिना वजह के आवाज, तरह तरह के दुर्गंध, और आजकल के सौंदर्य को क्या मानते हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी अट्टालिकाएं जिसमें कांच वांच लोहा वोहा बना हो तो वो सब ऐश्वर्य मानते हैं, एक भूकंप हो गया सब दुबई वुबई ऐसे बड़े बड़े शहर बनाए। जब हम दुबई गए थे पहली बार आश्चर्यचकित हो गए, इतने बड़े 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 इमारतें, 150 मंजिल, 200 मंजिल, 300 मंजिल, वो भी समुद्र के तट पे, थोड़ा कुछ हिल गया फिर धरती कुछ थोड़े कुछ हो गए खत्म। अभी यहाँ पे भूकंप हो भी जाए ठीक है, क्या करें, लकड़ी थोड़ा गिरेगा ना सब। आप 150 पे मंजिल में है, भूकंप हो गया क्या करें, कहाँ जाएंगे, कूद भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा ऐश्वर्य केवल दिखावा, चमक धमक, केवल चमक धमक से सब लोग आकर्षित हैं दिखाने के लिए सबको। क्या फायदा ऐसे ऐश्वर्य से, और ऐसे इसमें प्रतियोगिता होती है, स्पर्धा होती है, किसका ऐश्वर्य ज्यादा है दिखाने के लिए, किसको ज्यादा है। हम भारत में बहुत बढ़ गया है, मेरे घर में बड़ा टीवी है, इतना बड़ा स्क्रीन वाला टीवी है, तुम्हारे घर में इतना ही बड़ा टीवी, छोटा टीवी है, तुम्हारे पास ये मोटरसाइकिल है, मेरे पास इससे बड़ा ज्यादा आवाज करने वाला मोटरसाइकिल, तुम्हारे पास एक छोटी मारुति गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास इस तरह के, मेरे पास लंदन का बनाया हुआ वो कमीज है जो कि बांग्लादेश से जाता है, भारत से जाता है। हमने कमीज बनाए है, ये हमारा ऐश्वर्य है, देखो चमक धमक। सारी दुनिया में ये बीमारी है, चमक धमक। हम एक बार जब विदेश में गए थे, एक देश में, तो बहुत छोटा देश है, वहां पर बहुत सारे भारतीय लोग भी हैं, गुजराती लोग भी बहुत है, जो कि गुजरात के गांव से गए हैं, शहर से भी नहीं, गांव से, उनको हिंदी भी नहीं आती, केवल गांव की गुजराती उनको मालूम, वो कैसे भी तो वहां पहुंच गए दुनिया के दूसरे कोने में, और वहां पहुंच के उन्होंने मंदिर भी बना दिया, वहां मैंने प्रवचन भी दिया गुजराती लोगों के, इसमें सिंधी लोग भी हैं, लेकिन सिंधी लोग बड़े बड़े दुकान करते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं, गुजराती लोग, मैंने पूछा आपका व्यवसाय क्या है, तो भक्त बता रहे थे ये पैसे देते हैं उधार के लोगों को, वहाँ के लोगों को, और क्योंकि बैंक में इन लोग को पैसा कोई देगा नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए, ये लोग देते हैं, और ब्याज कितना देते हैं उनको आपको पता है, यह बैंक में आप पैसा लेने जाओ तो ब्याज कितना होता है,
10% 12% साल का है ना, एक साल का 10-12%। आप बाहर लेने जाओ बैंक में, नहीं बाहर तो लोग कितना देंगे, 12 में देंगे, 15 में देंगे, 20 में देंगे ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं, साल का 20। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप लोग कितने टक्के ब्याज में देते हैं पैसा वहाँ के लोगों के लिए, हाँ स्पेनिश बात करते हैं वो लोग, ये लोग स्पेनिश सीख गए उधर जाके, तो बोले 15% में देते हैं, लेकिन 15% महीना मतलब 180% साल का। तो मैंने उनसे पूछा वो लोग आपको गोली से उड़ा क्यों नहीं देते तो मुझे लगता है कि आप सब लोग जीवित हैं, और उसी दिन अगले दिन ऐसी घटना हुई कि एक किसी व्यक्ति ने गोली मारी और एक गुजराती आदमी को लग गया, मरा नहीं वो लेकिन उसको लग गया गोली। आप शोषण करोगे ना लोगों का 180% ब्याज रख के, और वो ब्याज भी नहीं दे पाते, तो ये सब समस्या क्यों हुई? तो मतलब वो बैंक में क्यों नहीं जाते, बैंक में कौन देगा उनको पैसा, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो क्यों ऐसे देते हैं इन लोगों को? क्योंकि वहाँ के लोगों की आदत क्या है, जैसे उनको तनख्वाह मिलती है ना उसी दिन उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्यों? सीधे बाजार में जाते हैं, जो आधुनिक जो भी वो आईफोन मोबाइल फोन नया नया जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है वो खरीदते हैं, नया नया जूता कुछ फैशनेबल जूता होता है, नया जैकेट होता है, नया कुछ चमकदार कुछ होता है, घड़ी वड़ी वो सब खरीद लेते हैं। चमक धमक से इतने प्रभावित हैं वो लोग और सब कुछ खर्च हो जाता है पहले दिन में ही, तो फिर खाएंगे क्या, और फिर अपने घर का किराया कैसे देंगे? फिर ये है ना भारतीय लोग हैं उधर, ये ले लो। तो मूल बात ये नहीं है कि ये लोग 180% पर देते हैं, मूल बात ये है कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि ये लोग इनके पास आते हैं, क्योंकि चमक धमक के इतने प्रभावित है ये लोग, इनको सारा महीने का तनख्वाह खर्च कर देते, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वही बात है, कमाते इतना खर्च करते हैं दुगना। और किस चीज में? ऐसा नहीं कि कोई आवश्यक वस्तु है, वो नया नया फैशन घड़ी है उसका वो लेंगे, फिर वो कह के वो नया फोन उस टाइप का चाहिए, उनके पास है दो चार है फोन, लेकिन अभी नया नया निकला है ना तो वो चाहिए उनको, फिर नया जूता एक बता रहे थे उनको, देखो वो जो जूता खरीदा उसने उसको न जाने कितने सैकड़ों डॉलर थे, पता नहीं कितने इस जूते के लिए इतना, और देखने में ऐसा भी कोई खास नहीं था वो जूता आखिर है वो जूता ना अभी यहाँ बिल्कुल दम के भक्तों को देखो नंगे पैर घूमते आराम से अभी चप्पल लेके घूमते रबर के चप्पल पहन खुश है सब, और वो लोग $200 $300 एक जूते के लिए। अब भारत में भी ऐसे ही चल रहा है, बेलगाम में भी देखो ना सब नए नए दुकान शुरू हो गए, चमक धमक, और एक कमीज खरीदने जाओ ₹5,000 ₹10,000 एक कमीज के लिए, और लोग खरीदते हैं। जूते खरीदने जाओ पता नहीं अभी क्या कीमत होगी बड़े बड़े जूतों की, क्या कीमत होती है बड़े बड़े आजकल फैशनेबल जूतों की, क्या कीमत होगी?
लिमिट ही नहीं है 5,000 10,000
एक जूते के लिए। हम जाके अभी रबर का चप्पल खरीदें कितना लगेगा?
120-150 रुपए
हो जाएगा। 10,000 रुपए का जूता खरीदते हैं
जो यहाँ पे चलता नहीं, यहाँ पे काम नहीं करेगा।
लोगों के पास कितने जूते पड़े होते हैं घर में, कितने सारे कपड़े, तरह तरह के कपड़े, जैकेट ये वो शर्ट, इस तरह से ये सारे जो ऐश्वर्य के जो एक धारणा है मन में हमारा, ये सब ऐश्वर्यशाली जीवन है, ये सब हमारा बेड़ा गर्क कर देता है। चमक धमक की दुनिया से आकर्षित होकर यही होता है। एक कीड़ा होता है जो रात के समय जन्म होता है उसका, परंतु वो सीधे जाके आग आग को देखता है ना, आग को देखकर इतना आकर्षित होकर उससे चमक से वो सीधे उसमें कूद पड़ता है और मर जाता है, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकता। उसका आग का चमक है ना, उसको इतना आकर्षित करता है, वो सोचता नहीं है कि मैं इसके अंदर जाके मर जाऊंगा, वो सीधा कूद पड़ता है उसमें। तो ठीक इसी तरह से लोग भी वो सब चमक धमक से आकर्षित होते हैं, कूद पड़ते हैं। और इसी तरह से फिर हमको ऋण लेना है, हमको ज्यादा ज्यादा ये सब चीजें खरीदनी है। सरल जीवन ऊंचा विचार का नाम किसी ने सुना ही नहीं, बिल्कुल उल्टा, ऊंचा जीवन सरल विचार है, चमक धमक का जीवन चाहिए। बाहर के विज्ञापन भी देखिए ना, सब चमक 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 सब जगह। जो आवश्यक नहीं है उन चीजों के प्रति हमारा मन आकर्षित करने के लिए तरह तरह के विज्ञापन, ताकि हम भी खरीद लें। पहले हमारे कोई हम खुशी से रह रहे थे कि ये चाय आ गया, फिर और कुछ आ गया, फिर और मैगी नूडल आ गया, फिर और कुछ आ गया, इसके बिना जी नहीं सकते। तो ऐसे इस तरह के अपप्रचार से अब क्या हो रहा है, सारी दुनिया पागल हो गई है। ये ऐश्वर्य को बढ़ाना 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 बढ़ाना, चमक दम सबको, दूसरों को दिखाओ, दूसरों को दिखाने के लिए बस इतना ही है, देखो मेरे पास इतना है। वो प्रभुपाद एक छोटी सी कहानी बोला करते थे ना बुखार के बारे में, आपको मालूम है, कौन बताएंगे? हाँ क्या था वो बताओ। हाँ बोलो बोलो।
नौकरानी को जब बुखार आता है, नौकरानी जहाँ काम करती है, तो उसकी पत्नी को इच्छा होती है।
किसकी पत्नी?
जो मालिक रहता है उसकी, कि मेरी नौकरानी को मेरे से ज्यादा बुखार की संख्या में भी उसके पास ज्यादा थे हैं। उसको अगर 102 पे बुखार है और मैं 98 पे हूँ, नॉर्मल हूँ, तो गलत कुछ करके बुखार बढ़ाना और 102 से ऊपर निकल
जाना। बिल्कुल सही। एक अमीर घर में एक नेम साहब थे, जो साहब की पत्नी थी। वो साहब तो बहुत करोड़पति, बहुत ज्यादा पैसा उसके पास। घर में एक दासी थी, नौकरानी थी। एक बार नौकरानी को बुखार हो गया, मेम साहब को भी बुखार हो गया। नौकरानी को 102 बुखार और मैडम को 100 बुखार। तो मेम साहब को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैं मेम साहब हूँ कि वो मेम साहब? मुझे 100 और उसको 102, मेरे से ज्यादा उसको हो गया, ये कैसे है? तो पति ने समझाने का प्रयास किया कि अरे उसके पास ज्यादा है तो क्या बुखार ज्यादा है ना, तुमको क्या समस्या? नहीं, जो भी हो उस मेम साहब, इसलिए मेरे से ज्यादा उसके पास नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये कहानी बताई कि हमारे जीवन में क्या है, समाज में बुखार बढ़ाने की सभ्यता है, और सब लोग एक दूसरे को अपना अपना बड़प्पन करते हैं। देखो मेरा बुखार 100 है, दूसरा बोलते अरे मेरा 102 है, तीसरा बोलते मेरा 103 है। तो जिसका ज्यादा बुखार, अच्छा आपका 103 है, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी 103 पे बढ़ाऊंगा इसको। तो दूसरा और एक आता है 104 वाला आता है, तो सब लोग देखते हैं वाह वाह उसका 104 है, और वो भी सोचते कब वो दिन आएगा जब मेरा 104 हो जाए। इस तरह से समाज चल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रगति, प्रगति है। तो बुखार बढ़ाना, जितना ज्यादा बुखार बढ़ाओ उतनी हमारी प्रगति हो गई है। ये ऐसे
गलत धारणा है आजकल समाज में। प्रगति के नाम पे हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की प्रगति है? अंधा यथांधे अर्पणीयमाना ते पीशतंत्र्यां पुरोगामि बद्धा। हम सब बधे हुए हैं, अंधे लोग हमको आगे ले जा रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, अंधे लोग, और इसको हम प्रगति मानते हैं, इसको हम ऐश्वर्य मानते हैं। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, पहले हमारा कितना सोना, घर में साधारण व्यक्ति के पास भी सोना हुआ करता था, और हर एक के घर में चांदी के जो बर्तन वगैरह होते थे, विशेष कारण के लिए क्यों ना हो, लेकिन रहते थे, सोने के भी होते थे कभी कभी, कम से कम जो कांसे के वगैरह तो होते ही होते थे निश्चित रूप से। आजकल हर एक के घर में प्लास्टिक के सब बने हैं, प्लास्टिक की चीजें सब इस्तेमाल करते हैं। सोना होता था पहले, फिर कागज आ गया, अभी प्लास्टिक आ गया है क्रेडिट कार्ड का, है ना। तो ये सब ऐश्वर्य की धारणा कैसे रह गई? परंतु सच्चा ऐश्वर्य क्या है कि सोना चांदी मोती मणि पुष्प वृक्ष रेशम, रेशम के कपड़े आजकल कौन पहनते हैं, कितना है आजकल महंगा। पहले रेशम के तरह तरह के वस्त्र होते थे, अरे शहरों को सजाए जाते थे रेशम के कपड़ों से। आजकल इतना ऐश्वर्य है हमारे पास नहीं, खुद वस्त्र पहनने के लिए रेशम के नहीं है, इतने महंगे हो जाते हैं। परंतु पहले प्रचुर मात्रा में ये सब उपलब्ध हुआ करते थे। तो भी ऐश्वर्य की परिभाषा ही गलत है आजकल। और एक कहावत है कि गवयो धनवान धान्य धनवान। धनवान कौन है? जिसके पास गाय है, जिसके पास धान्य है। आजकल गांव को छोड़कर भी लोग शहर में जाना चाहते हैं, गांव में अपने गाय है, अपना खेत है, वो छोड़कर लोग वहां जाके चौकीदार की नौकरी करते हैं, शॉपिंग मॉल में, चमक दमक में। परिश्रम करने की इच्छा नहीं रही अभी, शहर के लोग तो करते ही नहीं है परिश्रम, गांव में भी ऐसे भी फैल गया। तो यहां पर सच्चा ऐश्वर्य क्या है और सच्चा ऐश्वर्य के लक्षण क्या है और इनका प्रभाव अध्यात्मिकरण के ऊपर कैसे होता है, इसका भी एक वर्णन मैत्री ऋषि और प्रभुपाद जी कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। सबसे ऐश्वर्य सच्चे ऐश्वर्य के वातावरण है ना, सबसे धनी लोग
सेवा करते हैं, क्योंकि उनको लड़की भी नहीं देते, तो वो हम लोग को जब लड़के लोग
सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे गांव में ये सब बाहर का प्रचार गांव में कौन किया, ये सब प्रचार है आजकल गांव में। भारत में जहां भी जाओ गोबर उठाना मतलब ये छी, ऐसा नहीं कर सकते, गंदा काम। और लड़की देने के लिए अपना लड़की को, अरे गोबर का सेवा
नहीं देंगे हमारे लेकिन गोबर तो सबसे बड़ा धन है, गोमय बसते लक्ष्मी ही, गोमय में संपदा लक्ष्मी देवी का वास है, लक्ष्मी देवी जो कि धन है उनका वास गोबर में है। अब ये सब लोगों को नहीं मालूम, उनको लगता है जी जी गोबर का काम नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे हम, वो जाके चौकीदार का काम करेंगे शॉपिंग मॉल में, वो अच्छा हमारे लिए, गोबर को नहीं उठाएंगे, वो भी गाय की सेवा गोमाता की सेवा नहीं करेंगे, हमको वो करेंगे, क्योंकि हम आध्यात्मिक हमारे ये सब भागवत भगवद गीता ये सब भूल चुके हैं, ये सभ्यता वो संस्कृति अभी नहीं रही, ये सब चमक दमक से ही हम प्रभावित हो गए हैं, सब किसी ने तो शुरू किया ये अपप्रचार करना, अरे छी 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 गोबर छोड़ो मत कितना गंदा है, अरे गोबर से कृष्ण को का लेप लगाया जाता था, कृष्ण का अभिषेक किया जाता है गोमूत्र और गोबर से, कृष्ण को रक्षा करने के लिए पूतना के वध के बाद यशोदा मैया ने गोमूत्र गोबर से श्री कृष्ण के ऊपर लगाया शरीर के ऊपर, हम बोलते गंदा हम स्पर्श नहीं करना चाहते, हमारे सबसे सबसे भाग्यशाली व्यक्ति गोकुल धाम में हमारे रुक्मिणी रमन दिखने में गरीब, देखो ऐसे देखने से कृपा लगेगा पुत्र भी देखो कैसे है, लेकिन वास्तव में सबसे धनी तो ये सब धारणा नहीं है लोगों में अभी, वो चमक धमक बस, ये और टेलीविजन में से ये सब आ गया ना, सब जगह पहुंच गया ना, फोन टेलीविजन, तो सारा प्रदूषण बाहर का शहर का इधर आ गया, गांव सारे गांव, इसलिए आजकल लोग खेती नहीं करना चाहते, पॉश काम करना वो सोचते हैं पॉश काम करेंगे, हम बैठे नहीं उधर गाड़ी वाड़ी में घूमेंगे, ये ऐश्वर्य ये मूल बीमारी है आज सारे विश्व में, कोई खेती नहीं करना चाहता है, इसलिए इतनी समस्या हो गई, जो अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं वो लोग भी बोलते हैं कि बड़े बड़े कारखाने होने चाहिए, उसमें नौकरी करनी चाहिए, खेती की खेती में क्या रखा है, ट्रैक्टर लाओ बड़े बड़े ट्रैक्टर लाओ और फिर रासायनिक पदार्थों से ज्यादा उत्पादन लाने खींचने की कोशिश करो मिट्टी जमीन से, गन्ना 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 एकड़ 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 केवल गन्ना 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 बताओ और अपना भोजन बाहर से खरीद के लिए, पहले अपने परिवार के लिए उगाना चाहिए, चाहे वो अनाज हो सब्जी हो सब कुछ अपने घर के लिए उगाओ, उसके बाद में जो होता वो बेचो, भले अपना चावल अपना दाल अपने चावली अपनी सब्जी अपना फल, वास्तव में देखा जाए तो किसान को कोई खाद्य पदार्थ खरीदना नहीं चाहिए बाहर से, अपने आप सब बनाना चाहिए, गोकुल धाम में भी वैसे ही हमारा प्रयास है, अभी तक लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए बाहर से कोई खाद्य पदार्थ हम खरीदे नहीं, लेकिन अभी तक हम लोग खरीद रहे हैं, जो उगेगा उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए आसानी से, हरे कृष्णा ग्रंथराज श्री भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गो
Okay. Sorry.